दो वरदानों में आज के नहीं रहे। राम भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा है मेरी जगह और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास में जाने की आज्ञा दी है। इस कारण से न मेरे छत्र है न चंवर है, ये छत्र चंवर वगैरह अब भरत के लिए होंगे। इस कारण से मैं राज्याभिषेक की सामग्री को किस प्रकार से स्वीकार कर सकता था। मैंने भी अपने पिताजी के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि यही बात है तो मैं आजीवन में जा रहा हूं, तो मैं केवल तुमको ये कहने के लिए आया हूं और अब मैं धर्म को आगे करके और वन में जाने का विचार किया हूं। सीते भरत तुम्हारे छोटे देवर हैं, देवर होने के कारण से तुम्हारे लिए पुत्र के समान है, शत्रुघ्न भी तुम्हारे लिए पुत्र के समान है, लक्ष्मण वगैरह सब तुम्हारे लिए पुत्र के समान है। इन सब के ऊपर तुम स्नेह रखना और भरत के सामने कभी भी हमारी प्रशंसा मत करना, भरत का कभी निरादर मत करना। जो लोग समृद्धिशाली होते हैं उनके मन में एक स्वभाव है, वो अपनी प्रशंसा ज्यादा सुनना चाहते हैं, दूसरों की प्रसन्नता दूसरों की प्रशंसा उनको अच्छी नहीं लगती। इसलिए कभी भरत के सामने मेरी बड़ाई मत करना, भरत की आज्ञा का पालन करना। वो हमारे यहाँ के राजा हुए, वो यहाँ के स्वामी है, ऐसा मानना। देखो जब हम राजा के अनुकूल चलते हैं तो सब प्रकार से आनंद रहता है, और राजा से जहां प्रतिकूल होते हैं वहां पर राजा लोग किस समय में क्या अपना दिमाग बदल दे और कब क्या कुछ कर दे इसका कुछ पता नहीं चलता। इसलिए मैं आपको मैं तुमसे ये बात विशेषता से कहना चाहता हूं, राजाओं का स्वभाव है कि वे अपने प्रतिकूल चलने वाले बेटे को भी नहीं क्षमा करते और दूसरी जगह पैदा होने वाला कोई पुरुष यदि उनके अनुकूल चलता है उसको प्रेम से अपने पास में रखते हैं। भरत के आज्ञा का पालन करना, तुम्हारे मन में भाव कभी नहीं आना चाहिए कि देखो इस भरत ने राम का अधिकार ले लिया, ऐसी बातें कुलीन स्त्रियों के मन में नहीं आया करती है। मैं वन में जाऊंगा, तुमको यही रहना है और यही हमारे बूढ़े पिता की बूढ़ी माँ कौशल्या की सेवा करनी है। ये बात सुनकर के सीता जी ने कहा कि वाह बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत जल्दी से सपाटे से आप सब बात बोल गए, जैसे कोई आपने जैसा कहा वैसा ही होने वाला है। हे आर्य पुत्र, आपने हमको सेवा धर्म बताया लेकिन सेवा धर्म में कुछ बात कहना आप चूक गए कि भूल गए कि छिपा लिए, ये तो आप जाने। मैं ससुर की सेवा करूं ये ससुर की सेवा करना धर्म है, सासू की सेवा करूं ये मेरा धर्म है, लेकिन पति सेवा भी तो मेरा धर्म है ना। हे महाराज, स्त्री के लिए न पिता है न माता है न ससुर है न सासू है न बेटा है न कोई और है, पति रे को गति सदा। स्त्री के लिए एकमात्र संसार में पति होता है। आप वन में जाएंगे और सीता इन महलों में रहेंगी, ये पातिव्रत्य धर्म है मेरे लिए, क्या आप ऐसी शिक्षा देंगे मुझे। महाराज ईर्ष्या छोड़ो, रोष छोड़ो, और जिस प्रकार से पानी की केतली में पिया हुआ पानी भी लोग अपने साथ में रखते हैं, इस प्रकार से मुझे साथ में रखो। क्या बात कही है, ईर्ष्या छोड़ने का अर्थ कि आपके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं तो वन में जा सकता हूं सीता नहीं जा सकती, सीता भी वन में जाएगी तो एक तरह से आपके बराबरी हो जाएगी ना, ये ईर्ष्या आप मत रखो। और रोष भी मत करो कि मेरी बात नहीं मानती इसलिए रोष करे, रोष भी मत करो। महाराज मारवाड़ के अंदर मरुभूमि के अंदर लोग अपने पास में केतली रखते हैं और प्यास लगती है तो केतली से पानी पीते हैं। अब पूरा पानी थोड़ी पी सकते हैं, फिर वापस केतली को बंद कर दिया, अपना लटका लिया और फिर आगे चल दिए। देखो पीत शेष जल होता है वो नहीं रखना चाहिए। पीत शेष माने जितना पानी पी लिया और बाकी बच गया ना, वो ढोलने लायक होता है। इसीलिए संत महात्मा वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा जल पीते हैं कि भाई बाकी बच जाएगा, उसको जो है छोड़ना ना पड़े। थोड़ा थोड़ा जिस पात्र में पीते हैं उस पात्र, थोड़ा सा पात्र पी लिया, फिर पी लिया, फिर पी लिया। यदि बच जाए तो उसको ढोल देते हैं। परंतु मारवाड़ में क्या करें, अपने यहां क्या करें भाई। अब कोई आदमी बीकानेर से उधरामसर तक पैदल जाए और उस ये पड़े ऐसी, जैसे अभी गर्मी पड़ रही ऐसी गर्मी पड़े, और उसके पास केतली है इतनी सी, अब वो पानी पिएगा, पानी पीने के बाद उस पानी को ढोलने थोड़ी देगा, वो उस पानी को खूब बड़े प्रेम से रखेगा। तो महाराज भुक्त शेष जल के समान आप मुझे अपने साथ में रखिए। अर्थात वो पानी इतना अच्छा नहीं है फिर भी रखते हैं, तो महाराज मेरे में कोई कमी रह सकती है, आप मेरी कमी की तरफ विचार मत करो और मेरे को अपने पास में रखो, मेरा भी अपना कोई धर्म है। आप तो अपने पिता का धर्म पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं और मैं अपने पति के धर्म के लिए कुछ भी ना करूं, कैसे संभव है। अहम दुर्गम गमिष्यामी, आप यदि अयोध्या से बाहर जाते हैं तो अगला कदम तो मेरा रहेगा, उसके बाद आप मेरे पीछे आएंगे। आई तो मैं आपके पीछे हूं, लेकिन वन में मैं आपसे आगे जाऊंगा। हे प्राणनाथ, आप वहां पर फल फूल खाएंगे तो मैं भी तो वहां फल फूल से प्रसन्न रह सकती हूं। आप वहां पर घास फूस के पत्तों पर सोएंगे तो मैं भी वहां सो सकती हूं। इतना कह सकती हूं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी। महाराज वन में रहना तो बहुत अच्छा है, वन में रहने से बुद्धि सात्विक होती है। ओह मेरे लिए कितने आनंद की बात है, मेरे पति मेरे साथ और मेरा रहना वन में, जंगल में सात्विक निवास। एक तरफ तो वन धर्म पूरा होगा, एक तरफ पातिव्रत्य पूरा होगा। ऐसा तो महाराज स्वर्ग में भी आनंद नहीं मिलता। मैं तो महाराज आपके साथ जाऊंगी, आप जो है इस विषय में पूरा विचार कर लीजिए। नयस्वमाम मुझे ले चलिए, मैं किसी प्रकार से रुकने वाली नहीं हूं। राम जी ने कहा कि अरे तुम बिल्कुल भोली हो, तुमको पता नहीं है, तुम कभी भी किसी प्रकार से जंगलों को देखी तो हो नहीं। वन में बहुत देखो हर बात की तकलीफ होती है, चलोगे तो वहां कोई मार्ग थोड़ी बने हुए हैं। जंगलों में बताओ कौन फिरता, कोई नहीं फिरता, पशु वगैरह फिरते हैं। कभी जोर से बरसात आए और हम किसी गुफा में गए और वहां सिंह बैठा हुआ होगा तो सिंह खा जाएगा, और जो है बड़े प्यास लगी और किसी झरने के वहां गए और झरने के वहां सिंह बैठा होगा तो पानी कैसे पियोगे। चलते चलते लताओं के अंदर कई सांप वगैरह उलझे रहते हैं, वो सांप वगैरह खा जाएंगे, कैसे चलना होगा। और रात्रि के अंदर बरसात आए, रात्रि के अंदर ठंड पड़े और रात्रि में गर्मी रहे, मक्खी मच्छर खाए, कहां जाओगे। जंगल तो भाई पशुओं का स्थान होता है, ऋषि मुनि भी रहते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के आश्रम में अपने थोड़ी रहेंगे। ऋषि मुनियों का तो दर्शन कभी कभी होता है, घातक मारक जो है प्राणी ज्यादा रहते हैं, भयानि च भवन्त्यत्र। इसलिए वन में बहुत दुख होता है, वन में बहुत कष्ट रहता है, इसलिए वहां पर बिच्छू का, कीड़ों का, मच्छरों का। कहां तुम वन में जाने की बात करते हो, ये वन में जाने की बात छोड़ो। और यहां अभी नहीं डर रही हो, वहां जाने पर डर लगेगा, अभी तो कुछ नहीं है, तुमने विचार कर लिया। तुम कहते हो तो हमारे साथ, अच्छा मैं हूं तो मैं हूं तो मैं, मेरे साथ में तुम हो, लेकिन ऐसा भी तो कभी क्षण आएगा ना कि किसी क्षण के लिए मैं थोड़ा दूर हुआ और तुम्हारे सामने कोई राक्षस आ जाए, तुम्हारे सामने कोई सिंह वगैरह आ जाए, फिर क्या करोगी। इसलिए हम तुमको वन में कष्ट के कारण से नहीं ले जा सकते। सीता जी ने मंद मंद वचनों से कहा कि महाराज सिंहों से डराया, हाथियों से डराया, सर्पों से डराया, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे आपने अधर्म से नहीं डराया। सबसे बड़ा तो अधर्म है ना, वो हमको खाने वाला है। पति हमारे वन में पत्ते खाए और हम यहाँ पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए महलों में, राज प्रासादों में, हम लोग यहाँ पर बड़ा मीठा मीठा अन्न खाएं। वाह महाराज, पति ही ना तो या नारी नशा तक्षति जीवितुं कामम एवं विधम रामे त्वया मम निदर्शितम। शास्त्रों में और में सब जगह लिखा है कि नारी की शोभा पति से ही होती है, पति यदि नहीं है तो नारी की कोई शोभा नहीं है। और महाराज एक बात और भी है, एक बार मैं बच्ची थी, जनक जी महाराज के यहाँ पर एक ब्राह्मण आए, उन्होंने मेरा हाथ देखा, हाथ देकर के कहा, ए बेटी तुमको तो जंगल में रहना पड़ेगा। मैंने सोचा कि मैं जंगल में कैसे रहूंगी, मैंने कोई सोचा ही नहीं जंगल में कैसे रहूंगी, राजकुमारी हूं। तो आज मुझे पता चला कि ज्योतिष शास्त्र कितना सच्चा है। ऐसे ही एक बार एक भिक्षुणी आई, एक भिक्षुणी ने मुझे देख करके कहा, बेटा जंगल में रहने का अभ्यास कर लेना हो तुमको जंगल में रहना पड़ेगा। आज मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि एक ब्राह्मण ने भी कहा, एक भिक्षुणी ने भी कहा, तो बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ जाएंगे। भरता ही पर दैवतम, स्त्री के लिए पति सबसे बड़े भगवान होते हैं, सबसे बड़े देवता होते हैं। मेरे मन में आपके प्रति पातिवृत्य धर्म है, इसलिए मेरे मन में कोई संकोच नहीं है कि मैं आपके साथ न चलूं, जरूर चलूंगी। महाराज यहां तक भी शास्त्रों में बात लिखी है कि जो स्त्री यहां पति की उत्तम सेवा करती है वह स्त्री अपने पातिवृत्य से पति का कल्याण कर देती है, और यदि पति उसका उच्च लोक में जाने लायक है तो वो स्त्री पति के साथ में उच्च लोक में वैसे ही आनंदित रहती है जैसे विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी रहती है। ये लोके तो पतिभिर या स्त्री यस्य महाबल अद्भिर दत्ता स्वधर्मेण प्रेत्य भावे भी तस्य सा, मरने के बाद भी उसको वही पति मिला करता है। क्यों कि उसने एक पातिव्रत्य धर्म में अपने आप को एक पति के लिए समर्पित किया है, अब वही स्वभाव वही पति वही जीव उसको अगले जन्म में मिलेगा ताकि उसका पातिव्रत्य सुरक्षित रहे। तो भक्ताम पतिव्रताम दीनाम, तो आप मुझे किसी प्रकार से छोड़ नहीं सकते हो, और यदि आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं जहर खा लूंगी, मेरे को जलाने के बाद जाओगे ना, मैं जहर खा लूंगी, फांसी खा लूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपको अकेले वन में नहीं जाने दूंगी, और मैं नहीं रहूंगी उसके बाद चाहे आप कुछ भी करो। जब इतनी तक बात आ गई तो राम जी महाराज ने जो है सुनी, तो राम जी महाराज चुप रहे। सीता ने फिर कहा कि महाराज आपका क्या विचार है, तो किम त्वाम अन्यतः विदेह है पिता में मिथिला दीप है। अरे भाई सीते, मैं तुमको साथ में तो ले जाऊं, लेकिन कभी जनक जी महाराज मुझे मिलेंगे और जनक जी ये कहेंगे कि राम तुम्हारी आपस की कोई राजनीति थी, कौशल्या जाने, केकई जाने, दशरथ जी जाने, तुम्हारी अयोध्या जाने, वो जाने, ये जाने, भरत जाने, तुम जानो, मेरी सीता का क्या दोष था कि आप उसको वन में ले गए। वरदान में सीता के लिए तो कुछ बात ही नहीं आई थी, सीता के लिए तो कुछ कहा भी नहीं था, सीता को तो जंगल में क्यों ले गए, तो क्या मुझे वो जवाब देंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। वो यही कहेंगे कि ये बात अच्छी नहीं की। तो सीता जी ने कहा, वाह महाराज खूब बढ़िया बात कही, हमारे पिताजी यदि आपको मिलेंगे तो यही कहेंगे कि राम हमने आपको सीता का साहचरी दिया है, वो आपकी सहचरी है, आपके साथ में क्यों नहीं है, आप उसको क्यों नहीं लेकर के आए, अग्नि के साक्ष्य में आपने उसको स्वीकार किया है, हर समय के लिए हर अवस्था के लिए स्वीकार किया है, सीता को आप साथ में क्यों नहीं लाए, क्या वो सीता को कोई अपना धर्म नहीं निभाना था। वो कहेंगे कि राम तुम्हारे अंदर ताकत नहीं थी, तुम सूर्य वंश में पैदा तो हो गए लेकिन तुम्हारे में सूर्य जैसा तेज नहीं रहा कि तुम अपनी ताकत के बल पर एक स्त्री को अपने पास में नहीं रख सके, वो तुमको उपालंब देंगे। आप क्या सावित्री को नहीं जानते? सावित्री को मालूम था कि सत्यवान आज मरने वाला पर यमराज जी से लड़नी हो। आप पतिव्रताओं की शक्ति को पहचानते तो है महाराज, इसलिए आप उनको किसी प्रकार से मत छोड़िए। राम जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए ये सब बातें सुनकर के। राम जी ने कहा कि देखो भाई सीते, मैंने जितने भी वनवास के कष्ट बताए ये इसलिए बताए कि तुम यहां रहो, तुम कोमलांगी हो और तुम जो है ये सह नहीं सकते, और तुमको शायद घर बार की बहुत याद आएगी, कभी पीहर की याद आएगी, कभी ससुराल की याद आएगी, इसलिए मैंने कहा। और यदि किसी प्रकार से तुम्हारे चलने की इच्छा है तो भाई बात तो तुम्हारी सही है, तुम चल सकती हो, तुम्हारे तर्कों के सामने अब मेरा कोई तर्क चलने वाला नहीं है। अनुगच्छस्व माम भीरू, अब तुम मेरे साथ में चलो और तुम तैयार हो जाओ, और देखो ब्राह्मणों को याचकों को खूब सारा धन दान में दो। जब इनको धन दान में दोगे तो भाई उसके उसके द्वारा चित्त में यहाँ की याददाश्ती, यहाँ के भूख पदार्थ याद नहीं आएंगे। ये दान नहीं करते हैं ना, इस कारण से चित्त में वस्तु का धन का महत्व जमा रहता है, यथाशक्ति दान देना चाहिए। तो भूषणानी महारहानी वर वस्त्राणी आनी चे, सब कुछ तुम दान में दो। तो दान देने की तैयारी करने लगी। इधर लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आपने एक बात कही थी सीता जी को, मैंने सुन ली। क्या? कि तुम भरत को और लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को और इनको अपना बेटा मानो, और बेटा मान करके और जो है इनके पास में रहो। इसका तो मतलब ये हो गया कि लक्ष्मण यही रहेगा, इसका मतलब यही निकला ना महाराज। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं क्रोध करता हूं तो सब पर ही करता हूं, मैं आपको भी क्रोध करूंगा कि मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे आप किस हिसाब, आप बताओ किस हिसाब से मुझको पीछे छोड़ रहे हो, क्यों पीछे छोड़ते हो? कि भाई तुमने तो, तुम्हारे लिए तो वरदान नहीं है, यही तो कहोगे, वरदान तो मेरे लिए है तो तुम यहां रहो। ऐसा नहीं है, कल आपका राज्याभिषेक का जब समाचार आया था आपने कहा कि लक्ष्मण ये मेरा राज्याभिषेक है तो ये तेरा ही है, ये आपने कल बात कही थी। तो ये आपका वनवास है वो मेरा ही वनवास है, अब आप यहां आप मुझे पीछा क्यों छोड़ते हैं? न देवलोका क्रमणम ना मरत्वम अहम ऋणे, आप मुझको ये मत कहना कि देखो तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा और ये नहीं मिलेगा, न मुझे स्वर्ग की जरूरत है, न बाबा मुझे मोक्ष की जरूरत है, मुझे तो केवल एक आपकी जरूरत है, आपके बिना नहीं रह सकता हूं, मोक्ष के बिना रह जाऊंगा, स्वर्ग के बिना रह जाऊंगा। कि भाई माँ बाप की सेवा करो, बहुत अच्छी बात है, माँ बाप की सेवा तो करनी है, तो मेरे माँ तो आप, मेरे बाप तो आप हो, मेरी माँ सीता है, माँ बाप की सेवा हो रही है। अरे ऐसा थोड़ी कहता हूं मैं, तो कहूं बूढ़े दशरथ जी है, दशरथ जी के पास में रहो। क्या देखो महाराज अभी इतनी बातें नहीं चलेंगी, यदर्थम प्रतिषेधों में क्रियते गंतुम इच्छता है, आप मुझे क्या समझ करके निषेध करोगे, आपके पास में कोई शब्द नहीं है। राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण तुम हमको प्राणों के समान प्यारे लगते हो, मैं वन में जा रहा हूं लेकिन पीछे से देखो कोई यहां पर ये ना, ये देखो पता नहीं चलता लक्ष्मण ये भरत है ना, राज्य प्राप्त करके अब कैसा बर्ताव करे, तो इस भरत का हमको पूरा विश्वास नहीं है, और वो यदि केकी के कहे कहे यदि वो अपने माँ को कष्ट देवे तो फिर बताओ क्या होगा। लक्ष्मण ने कहा रहने दो, ये सब बातें मनाने की है, भरत धर्मात्मा पुरुष है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, आप मुझे रोकने के बहाने से ऐसी बात बोलते हो, आप मैं ऐसे रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो महाराज आपके साथ चलूंगा। राम जी ने कहा कि अरे भाई तेरा तेज होगा तो उस तेरे तेज से भरत दबा रहेगा, और भरत के व्यवहार में गलती होने पर तू जो है बोल देगा, कौशल्या के प्रति सुमित्रा के प्रति जो बर्ताव होगा तुम बोल तो दोगे, दूसरा बोलने वाला ही कोई नहीं है। तो एक काम है महाराज, हाँ तो एक बात है, मैं आपके साथ में वन में रहूंगा, उस स्थिति में यदि हमको एक काम करें, अपने यहाँ एक दूत रखे, उस दूत को हम लोग कहे कि कब ये सुमित्रा के साथ और कब कौशल्या के साथ पक्षपात करता है भरत, उसी समय में वो दूत आके मुझे कहेगा मैं वापिस अयोध्या आ जाऊंगा। अयोध्या आकर के और भरत से लड़ाई झगड़ा करके समझा करके डांट करके डपट करके वापिस आपके पास आ जाऊंगा, क्योंकि 14 वर्ष का अखंड वनवास तो आपके लिए मेरे लिए तो है नहीं, आ जाऊंगा संभाल लूंगा आता जाता रहूंगा, लेकिन आपको छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। भगवान राम ने देखा कि भाई ये तो किसी प्रकार से कब्जे में आने वाला नहीं है। भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मण जो है तुम चल करके क्या करोगे, मैं देखो मैं आपके लिए क्या क्या करूंगा, एक तो रहूंगा कुदाली, एक लूंगा फावड़ा, गैती और फावड़ा मेरे पास रखूंगा, मुझे मालूम चलेगा कि आप वहां विश्राम करेंगे, उस वृक्ष के नीचे खूब छाया है, तो मैं कुदाली लेकर फावड़ा लेकर आगे चला जाकर उस जमीन का शोधन करूंगा, फावड़े से जमीन साफ कर दूंगा, और कहीं पर आपकी छाया करनी होगी छाया करूंगा। अच्छा दूसरी बात यह है कि आपके लिए कंदमूल फल लेकर के आ जाऊंगा, कंदमूल फल ले आऊंगा और सेवा करूंगा, आपके पास सेवक की तो आवश्यकता रहेगी, वो सेवक आपके पास भी मौजूद है। अच्छी बात, एक काम करो लक्ष्मण, मैंने तुम्हें जितनी बात कही थी वो तुम्हारी प्रेम की बात देखने के लिए कही थी, तुम अभी चुपचाप गुरुजी के आश्रम में जाओ। गुरुजी के आश्रम के अंदर जनक जी महाराज ने दहेज में हमको अक्षय तूणीर दिया है और अभेद्य कवच दिए हैं, वो कवच तुम चुपचाप ले आओ, और एक पिटारी के अंदर कवचों को तुम नीचे रख दो, और तूणीर है वो तूणीर अपने यहाँ कंधों में बांध लेते, एक तुम बांध लो एक मैं बांध लेता हूँ, और जो है दो तलवारें हैं बड़ी विलक्षण तलवारें हैं, इन तलवारों के प्रयोग से कभी भी कोई भी इनके सामने टिक नहीं सकेगा, तलवार का प्रहार सार्थक होगा, ऐसा नहीं तलवार चलाया और वो बच गया, ऐसा नहीं होगा, तलवार से जो भी कोई शत्रु आएगा वो समाप्त ही होगा, ऐसी दिव्य तलवारें हैं, उन सबको ले आओ और एक पेटी के अंदर उन सबको सामान को नीचे ही नीचे रखो, किसी को पता भी न चले, गुरुजी के वहां पर हमने छिपा के रख रखा है, तो उनके पास जाओ और उनको जाकर के सब सामान चुपचाप ले आओ। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ ऐसी कोई बात बने ना, ये काम करने के लिए तो मैं तो ठीक रहूंगा आपके सामने। अब जो है लक्ष्मण जी महाराज गए और गुरु जी के वहां जाकर के सब सामान ले आए। राम जी महाराज ने फिर कहा अलवा लक्ष्मण सब सामान आ गया, अब एक काम और करो। कि क्या? कि गुरु जी के पुत्र है वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ, उनको यहाँ पर बुलाओ और सीता भी दान देगी, मैं भी दान दूंगा, तुम भी खूब सारा दान दो। तब वहां पर वो सुयज्ञ है कई ब्राह्मणों को लेकर के आया। अब ब्राह्मणों को लेकर आया तो भगवान ने खूब सोना दिया कि ये तुम्हारे लिए सोना है, ये तुम्हारे लिए पलंग है, ये तुम्हारे लिए वस्त्र है, ये तुम्हारे लिए ये चीजें हैं, और कहा कि 14 वर्ष तक का ये खाने पीने का पूरा प्रबंध आपका यहाँ पर हम कर रहे हैं। सब ब्राह्मणों के खाने पीने का प्रबंध 14 वर्ष का हो गया। ये देखो कौशल्या है, ये तुम्हारी स्त्री के लिए ये आभूषण दे रही है और ये दे रही है वो दे रही है, सब आभूषण दिए। साथ में ये भी कहा कि देखो ये कौशल्या जी के तुम यहाँ पर बराबर जाते रहना, कौशल्या जी को आप बराबर आशीर्वाद देती हो तो कौशल्या जी के महल में जाकर आप स्वस्ति वाचन करते हो, तो इसके विषय में ये दान भी दे रहे हैं और आगे भी तुम जो है इस प्रकार से जाते रहना, ये हमारे महल सुने रहेंगे, तो आप इन महलों में बराबर आते जाते रहना और इन महलों को आप लोग संभालते रहना। सबको दान दे दिया। अब एक क्या पता वाल्मीकि जी महाराज ने क्या एक विनोद किया है, बड़ा विनोद, बहुत अच्छा विनोद किया, हंसी की बात आए जैसे। एक एक जो है ब्राह्मण था, उसकी पत्नी जो है उसने कहा अपने पति से कि हे ब्राह्मण देवता, राम जी आज खूब दान दे रहे हैं ब्राह्मणों को, तुम भी जाओ और जो है वहां दान लेके आओ। ब्राह्मण ने कहा कि अरे तुम जानती हो वो तो पढ़े लिखे ब्राह्मणों को दान देते हैं अब न तो मैं स्वस्ति वाचन कर सकूं, न मैं कोई जो है पुष्पांजलि बोल सकूं, मैं तो बिल्कुल कोरा बस भोजन करता हूं, भोजन भट्ट ब्राह्मण हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किस हिसाब से उनके पास जाऊं? कि नहीं नहीं तुम जाओ, आप जाओ और जाकर के कह दो मैं ब्राह्मण हूं और गरीब ब्राह्मण हूं, बस इतना बहुत है। तो वो ब्राह्मण गया वहां, उसका नाम था त्रिजट। वो त्रिजट ब्राह्मण वहां गया, वहां पर बड़े बड़े ब्राह्मण लोग थे, उनके बीच में ही गया वो, बिल्कुल बहुत सरल ब्राह्मण। वहां जाकर महाराज राम की जय हो, मैं त्रिजट गरीब ब्राह्मण आपके पास इसलिए आया हूँ कि आज आप लोगों को दान देकर उनकी गरीबी दूर कर रहे हैं। महाराज मैं बहुत दिनों का एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास खाने के लिए भी नहीं है, मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने बार बार आपकी तरफ आने के लिए कहा, मैं आया हूँ, पढ़ा लिखा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ये बात जब सब लोगों ने सुनी तो परिहास समझ, सब लोग खूब उसकी सरलता पर खूब हंसी आई, सबको हंसी आई। तो राम जी महाराज ने कहा, अरे अरे ऐसे ब्राह्मण की भी जरूरत है मुझे, आओ आओ देखो ये डंडा ले, ये डंडा लेकर के और बड़ी ताकत लगा करके इसको फेंको, और फेंक करके इसकी गोलाई में जितने जितनी गायें हैं सब गायें तुमको दान में दी। अच्छा इतनी गाय दे दोगे क्या? हाँ, ये वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि उसने अपनी धोती थी, पहले तो ढीली डाली धोती थी, अब वो धोती लेकर के उसको यू करके कस करके और उसको खूब अच्छी तरह से घुटनों से ऊपर तक पूरी करके और शरीर को यू थोड़ा घुमा करके और अपने पैर जो है आगे रख करके और यू करके दो यू जम करके पैर जमा करके और बड़े जोर से उन्होंने उस डंडी को फेंकाई। डंडी को फेंका तो वो हजारों गायों को पार करके गई, वो डंडा फेंका तब तो राम जी महाराज खूब जोर से हंसे और कहा कि वह ब्राह्मण देवता हमारा जी खुश कर दिया, ये सारे गाय तुम्हारी है, सब धोवे तुम्हारी है। कहा वो राजी हो गया ब्राह्मण। भगवान ने कहा रे इधरा इधरा, ब्राह्मण देवता का हाथ अपने हाथ में लिया और बड़े प्रेम से छाती से उसके हाथ पर रख के कहा, देखो ब्राह्मण देवता बुरा मत मानना, आप सोचोगे कि देखो हमसे लकड़ी फिकवाई और फिर उसके बाद ऐसा कहा, देखो हमने तो विरोध किया था, हमने देखा कि आपका संकल्प और आपकी शक्ति ये सब जो है भरपूर रहे, आपको ऐसा न लगे कि हम फोकट में लेके आए हैं, आपको ऐसा लगे कि नहीं हम परिश्रम करके लाए हैं, इसलिए हमने आपके साथ में विरोध किया है, आपको ये हमारी बात बुरी नहीं मानना। अब ये बात ये कथा क्यों दी यहाँ, क्या मतलब इसका? इसका मतलब बड़ा गहरा है। क्या इसका मतलब है? कि देखो राम जी पर आफत आ रही है, राज्य इनका चला गया, सब कुछ इनका ऐसे ही हो गया और राम जी महाराज विरोध कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि राम जी महाराज के ऊपर इस विपत्ति का कोई असर नहीं हुआ, ऐसे राम जी महाराज विरोध कर रहे हैं तो असर क्या हो। अब उसके बाद जब सब प्रकार से दान वगैरह दे दिया तो दान देने के बाद में अब राम जी महाराज अपने महल से रवाना होकर पिताजी के पास में पहुंच रहे हैं। जब राम जी महाराज अब पहुंच रहे तो भाई कोई रथ वगैरह अपने पास में नहीं रखा, अब सब बिजली की तरह से सारे नगर में बात फैल गई, कहो हे हम तो यही राजी होके आए, हमने तो गर्म है, वर्षम उष्णंत शीतं च निश्चित्यासु विवर्ण्यता यान शक्या पुरा दृष्टुम अहो, हम तो देखो यही राजी हो रहे थे, राम जी को राजगद्दी मिल रही है, राम जी को तो वनवास मिल रहा है, ठीक राम जी को वनवास मिल रहा है, राम जी को तो वनवास मिला है, ये देखो राम जी जा रहे हैं, ओहो इनकी सवारी क्या निकलने वाली, ये क्या हो गया, देखो साथ में सीता है, अरे सीता जी को तो कोई देख नहीं सकता था, अंतपुर की स्त्री कौन देख सके, महलों में रहने वाली, और आज देखो ये सड़कों के ऊपर जा रही है, दशरथ जी को कोई प्रेत लग गया, क्या हो गया, अपन ऐसा करो दशरथ जी के पास जाओ, दशरथ जी को कह दो कि हम कोई अयोध्या के अंदर नहीं रहेंगे, देखें दशरथ जी क्या करते हैं, हम सब कह देते हैं कि जाओ यहां से, हम राम जी के साथ में जाएंगे। पीड़िया पीड़ितम सर्वम जगदस्य जगतपते, सारे संसार के अंदर एक पीड़ा फैला दी, सारे संसार को कष्ट दिया। देखो सब मनुष्यों में राम ही तो सार है, और इसके ऊपर ही जो आफत आई वो सारों पर ही तो आफत आई है। ऐसे राम जी महाराज सबकी बातें सुन रहे हैं। लोगों ने कहा एक काम करो, अपने घरों में खूब खजाना तो है ही, अपने घर में आंगन खोदो और आंगन के अंदर सोना चांदी ये आभूषण है ये अपने बोरों में भर भर करके, और मकान में जो कुछ भी सामग्री बोरों में भर करके सोना चांदी लेकर के चले जाओ, और घर में जगह जगह बिल कर दो, और दुनिया भर के चूहों को कह दो कि आ जाओ चूहो तुम हमारे घरों में रहो, और तुम्हारे राजा कौन बनेंगे, भरत, भरत को चूहों का राजा बना दो, और अपने सब यहां से चल पड़ो। मूषकई परिधावत वीर उद्वेली रावृता नीचे, घरों में केवल चूहे ही चूहे चूहे ही चूहे नाचते रहे। देखो ये क्या, अयोध्या को देखो तो सही है, राम जी के वन गमन की बात सुनने से उदास उदास लगने